मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 22 फरवरी 2019 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 मार्च से शुरू होने वाली क्लासेस में दाखिला लिया है। इन दोस्तों के नाम हैं अनुज कुमार, आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं, और नवीन चतुर्वेदी, आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। तो अनुज और नवीन, आप दोनों साथियों का मैं अपनी एकेडमी की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चंस पर बात करूंगा। इंटरव्यू के क्वेश्चंस यानी कि अभी जो धौलपुर हाउस में इंटरव्यू चल रहे हैं आईएएस एग्जामिनेशन के, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका एक नमूना मैं आप लोगों के सामने आज रखने जा रहा हूं, और साथ ही साथ हम इंटरव्यू के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। लेकिन आइए पहले थोड़ी सी दूसरी खबरों को देख लेते हैं। एक खबर आपने सुनी और वह था कि भारत ने कहा है कि वह उसका जो पानी पाकिस्तान चला जाता है उसे रोकेगा। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने अभी जो भारत पर आतंकवादी आत्मघाती हमला किया जिसमें हमारे लगभग 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए हैं, इसके बाद से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है और खासकर भारत अब कुछ बोल्ड स्टेप लेने लगा है। अब वो कुछ बोल्ड स्टेप्स उठा रहा है। नो डाउट कि हमारा अधिकार है, हमारी अपनी संप्रभुता है, और अगर कोई उस पर चोट पहुंचाएगा, कोई भी राष्ट्र हो, तो अपने ढंग से वो कदम उठाएगा। तो भारत ने कम से कम इस तरह के कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और उन कदमों की चर्चा हम लोग बीच बीच में कर भी रहे हैं। उन्हीं कदमों के तहत एक कदम यह भी है। दोस्तों, आपको शायद मालूम हो, अगर नहीं मालूम हो तो इसे आप बहुत अच्छे तरीके से जान भी लीजिएगा। वो ये कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सितंबर 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था। सिंधु घाटी जो है, जो आप इतिहास में पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वहां 6 नदियों को लेकर के समझौता हुआ था, क्योंकि ये जो नदियां हैं, ज्यादातर नदियां पता लगा कि पाकिस्तान से निकल करके भारत में आ रही हैं। विभाजन के बाद ये संकट हुआ तो नदियों के जल के बारे में समझौता हुआ और 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया। इसमें से न्यूज में भी आपने सुना होगा कि पूर्वी नदियों के जल पर भारत को अधिकार दिया गया और पश्चिमी नदियों के जल पर पाकिस्तान को अधिकार दिया गया। इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि प्री में क्वेश्चन आ भी जाए, पिछले साल शायद पूछा भी गया था, हो सकता है इस बार फिर से रिपीट हो जाए। तो अब देखिए कि भारत ने यह नहीं कहा है कि वो पूरा का पूरा पानी रोक देगा। नो, वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि हमें जितना पानी यूज करने का अधिकार है, उस समझौते के तहत ही जितना हमें पानी उपयोग करने का अधिकार है, हम उसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हम उसका लगभग 95% पानी ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं और जो 5% पानी है वो बह करके पाकिस्तान चला जाता है। ठीक है, हम जाने देते हैं और हम क्या करें। लेकिन अब ये कहा है भारत ने कि नहीं, अब हम उस 5% पानी को भी बहकर वहां नहीं जाने देंगे, उसे हम अपनी तरफ मोड़ लेंगे। वो कैसे मोड़ा जाएगा, वो एक टेक्निकल बात है। यहां पर 2 तथ्य आपको मैं स्पेशली इस साल के अभी जो आपके जून में सिविल सर्विस का प्री एग्जाम होने जा रहा है उसके बारे में दोस्तों बताना चाहूंगा, और तैयारी के लिए इसी तरह की सतर्कता थोड़ी बरतनी पड़ती है। पहली बात तो यह है कि रावी नदी पर भारत ने एक बांध बनाना शुरू कर दिया है जिसका नाम है शाहपुर कंडी बांध। याद रखिए कि ये रावी नदी के ऊपर बन रहा है, राइट। और दूसरा है कठुआ के पास एक ऊझ प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। कठुआ के पास ऊझ प्रोजेक्ट, ये दोनों नाम आपको याद रहने चाहिए। प्री में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि जो बाकी हमारा जो पानी बचेगा, भारत ने कहा है, वो रावी व्यास लिंक 2 के जरिए देश के दूसरे भागों में पहुंचा दिया जाएगा। यानी कि हमारा जो 100% जल है हमारे अधिकार क्षेत्र में, अब हम उस पूरे जल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए कि अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक है हमारे 95% में काम चल रहा है या इतनी जरूरत है तो हम 5% पानी उधर छोड़ देते हैं कि भाई ठीक है लो चलो तुम इस्तेमाल कर लो। लेकिन अगर स्थिति यह है, हमारी विनम्रता का, हमारे सहयोग का अगर हमें यह प्रतिफल मिलता है तो डेफिनेटली हम भी उसी तरह से कुछ कदम उठाने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। तो उसी का एक हिस्सा दोस्तों यह है जो भारत पाकिस्तान सिंधु जल जो समझौता है उसके बारे में आपको थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी भी ले लेनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है कल के न्यूज में और वो है कि दो अभी दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन है, दो, नंबर वन आतंकवाद और दूसरा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। मित्रों ये दोनों ही आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में हैं और केवल सिलेबस में ही नहीं है बल्कि हर साल मेंस में पूछे जाने वाले टॉपिक भी है। आप किसी भी साल के अनसॉल्व्ड पेपर को उठा करके देख लीजिए, मेंस में हमेशा इन दोनों टॉपिक्स पर कोई ना कोई प्रश्न रहा ही है, राइट? तो मैं चाहूंगा कि ये दोनों टॉपिक आपके बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएं। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, इंटरव्यू के प्रश्न। देखिए एक बात तो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा दोस्तों शुरू में ही कि जब हम इंटरव्यू की तैयारी की बात करते हैं तो ये इंटरव्यू है क्या, ये आपके व्यक्तित्व को बताने वाला होता है। और जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसमें केवल यही नहीं होता कि हम दिख कैसे रहे हैं, हमारी मानसिक क्षमता का भी उसमें अनुमान लग जाता है क्योंकि वो बातचीत करते हैं। और कोई भी इंटरव्यू आप मान के चलिए, आप अगर प्रश्न उनके प्रश्नों के जवाब नहीं भी दे रहे हैं तो 20-25 मिनट आपसे बात करेंगे ही। अब ये जो मानसिक क्षमता का जो वो अंदाजा लगाते हैं, याद रखिए आपके ज्ञान का अंदाजा नहीं लगा रहे हैं। आप अपने सिलेबस में देखिए, आपके स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ज्ञान का प्रमाण तो आपने मेंस क्वालिफाई करके दे दिया है, तो आपके व्यक्तित्व को देख रहे हैं। मानसिक शक्ति आप में कितनी है, उसमें मौलिकता कितनी है, उसमें लॉजिक पावर कितनी है, उसमें ताकत कितनी है, उसमें संतुलन कितना है, इन सब का अनुमान लगाते हैं और बातचीत करके वो अनुमान लग जाता है, वो अनुभवी लोग होते हैं। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मेरे पास जो मेल आते हैं, आप देखिए कि मानसिक क्षमता का कैसे अंदाजा लगता है। इन सब चीजों पर अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तो आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना होगा, विचार करना होगा। डेली मेरे पास कुछ बड़े सिली किस्म के क्वेश्चन आते हैं, सिली किस्म के ही क्वेश्चन मैं इन्हें कहूंगा। क्या क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है तो क्या मैं इस साल सिविल सर्विस में बैठने के एलिजिबल हूं, डेट ऑफ बर्थ मुझे लिख के भेज रहे हैं, क्या आपके में इतनी क्षमता नहीं है कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को काउंट करके देखें कि आप 21 साल पूरे हो, आपके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर आपके दिमाग में इतनी भी क्षमता नहीं है तो क्यों इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। फिर क्या आएगा कि सर मुझे जरा सा सिलेबस भेज दीजिए, यूपीएससी का सिलेबस भेज दीजिए, सर क्या आप मुझे अनसॉल्व्ड पेपर भेज सकते हैं। मुझे आश्चर्य होता है इस तरह के प्रश्नों को पढ़ करके कि सिलेबस और अनसॉल्व्ड पेपर आप मुझसे मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया है कि ये कहां मिल सकते हैं। और अगर आप मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे हैं तभी तो आप मुझे मेल लिख रहे हैं, तो आपके पास फोन तो है, स्मार्टफोन तो है जिसमें आप सुन रहे होंगे, और उसी में यूपीएससी का पूरा वो आपको वेबसाइट दी हुई है, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट दी हुई है, यहां तक कि AFEIS की अपनी वेबसाइट है, उसका अपना ऐप है, उसको जरा खोल करके देख लीजिए तो वहां सारे अनसॉल्व्ड पेपर भी हैं और वहां आपका सिलेबस भी है। लेकिन आपने इतना करने की जहमत नहीं उठाई है, सारी चीजें आप दूसरों को सौंप दीजिए और वो आपको प्रोवाइड करते रहे, तो ये आपके दिमाग की किस स्थिति को अभिव्यक्त करता है बताइए। और आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनने का मतलब है कि अपनी जरूरतों को छोड़ करके दूसरों की समस्याओं का हल ढूंढना। आप सिविल सर्वेंट इसलिए बनने जा रहे हैं, राजकुमार बन करके वहां आराम फरमाने नहीं जा रहे हैं, दूसरों की समस्याओं से जूझने जा रहे हैं। और आपसे अपनी ये छोटी छोटी समस्याएं हल नहीं हो रही है कि सर मुझे जरा सा इसके बारे में रूल्स बता दीजिए, सर क्या कोई मैं ये लैंग्वेज ले सकता हूं, सर कितने अटेम्प्ट मुझे मिलेंगे। इस तरह के जब आप प्रश्न पूछते हैं तो सच पूछे तो मुझे बहुत दुख होता है। दुख इस मायने में होता है कि आप अपने को इतना बेचारा क्यों समझते हैं, इतने कमजोर क्यों समझते हैं, इतने असहाय आप बन क्यों गए हैं, क्या वास्तव में हैं या आपने अपने आप को बना लिया है। मित्रों ये सीधे सीधे याद रखिए कि आपकी पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ है, आपकी मानसिक स्थिति को अभिव्यक्त करता है। पर्सनालिटी यहां से शुरू होती है। आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं करना चाहते लेकिन सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, राइट? मित्रों, मेरे पास आज इंटरव्यू के कुछ प्रश्न आए हैं और इन प्रश्नों को भेजा है प्रवीण चौरसिया ने। तो सबसे पहले तो मैं आप सबकी ओर से और अपने पूरी टीम की ओर से, अपनी ओर से, मैडम की ओर से प्रवीण चौरसिया को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी बात को फॉलो किया। मैंने कुछ दिनों पहले ही आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप सब यूपीएससी के ऑफिस यानी कि धौलपुर हाउस जाएं, वहां स्टूडेंट इंटरव्यू देने आ रहे हैं उनसे बातचीत करें और मुझे प्रश्न फिर लिखकर अगर भेजेंगे तो मैं उन्हें दूसरों तक पहुंचा सकूंगा। तो इनफैक्ट मैं केवल पहुंचाने का माध्यम हूं। ये प्रश्न प्रवीण चौरसिया ने भेजे हैं और मुझे इस बात को पढ़कर थोड़ी सी खुशी हुई। प्रवीण ने ही लिखा कि राहुल, विकास और कुलदीप जो हमारे 9th बैच के स्टूडेंट थे वे भी वहां पहुंचे हुए थे और प्रवीण से उनकी मुलाकात हुई। मित्रों, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं अब आपको कुछ प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं। ये प्रश्न पढ़कर मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, इसके पीछे मेरा बहुत ही पवित्र और बहुत ही ठोस और व्यावहारिक उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि जनरली इंटरव्यू को लेकर के लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा दबाव रहता है। उनको लगता है कि पता नहीं क्या पूछा जाएगा, क्या हम उत्तर देंगे, कैसे हम तैयारी करें। मैं आपको प्रश्न केवल इसलिए पढ़कर सुना रहा हूं जो पूछे गए हैं कि सुनने के बाद आप दो चीजों का अनुमान लगाइएगा। पहला, क्या इसमें कोई प्रश्न ऐसा है जो आप पहली बार सुन रहे हैं या जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप पिछले, मैं कहूं कि 9 महीने से या चलिए 1 साल के पीरियड को हम ले लेते हैं, अगर आप पिछले 1 साल से डेली ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं तब फिर आप ये सोचिएगा कि क्या इसमें से कोई ऐसा टॉपिक है जिसकी चर्चा डेली ऑडियो लेक्चर में न हुई हो और प्रोमिनेंटली न हुई हो। मतलब एक तो ऐसे ही होता है कि आप गिनाते चले जाइए और दूसरा यह होता है कि आप प्रोमिनेंटली उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रोमिनेंटली चर्चा करने का मतलब है कि आप उसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। आप दोनों का अनुमान लगाइएगा। और मित्रों, अगर आपको एक बार लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है तो फिर आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए कि नहीं, इंटरव्यू कोई बहुत बड़े आप कह लीजिए कि दुर्लभ पहाड़ की चढ़ाई नहीं है, आप भी कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए जो डिसिप्लिन चाहिए वो डिसिप्लिन तो आपको निभानी ही होगी क्योंकि ये आपको एक्वायर करना होगा, कोई दूसरा व्यक्ति आपको दे नहीं सकता। दूसरा तो केवल आपकी मदद कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। तो दोस्तों, जो प्रश्न पूछे गए हैं आइए मैं क्विकली उन प्रश्नों को थोड़ा सा पढ़ देता हूं। एक प्रश्न है, उन्होंने प्रश्नों की सूची भेजी है, टेररिज्म एज ए थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, इंडिया स्टैंड ऑन इट, यानी कि जो टेररिज्म है, आतंकवाद है, ये पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए एक खतरा है और भारत की इसके बारे में क्या नीति है, भारत का क्या स्टैंड है। इंपॉर्टेंस ऑफ सऊदी अरबिया टू इंडिया, आप कल या परसों का मेरा डेली ऑडियो लेक्चर उठा करके देख लीजिए कि मैंने इसके बारे में क्या कहा था और वो आपके इंटरव्यू में पूछा जा रहा है। कश्मीर प्रॉब्लम एंड आर्टिकल 370, आपको मालूम है कि कश्मीर प्रॉब्लम में मैंने 370 की चर्चा तो नहीं की थी लेकिन जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके बारे में मैंने कुछ ही दिनों पहले बात की थी और मैंने बताया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आपकी अच्छी तैयारी हो जानी चाहिए। रिसेंट स्टेटस ऑफ चाइल्ड मैरिज इन राजस्थान, यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि इन राजस्थान में पूछा है तो डेफिनेटली जहां तक मेरा अनुमान है कि ये जो स्टूडेंट होगा जो इंटरव्यू दे रहा है वो राजस्थान का होगा। और वैसे भी लगभग 1 सप्ताह पहले चाइल्ड मैरिज पर एक रिपोर्ट आई थी और उसमें यह था कि राजस्थान में अभी ये काफी बड़ी मात्रा में अभी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, उस रिपोर्ट में बकायदे मेंशन किया हुआ था। तो स्वाभाविक है कि अगर आप राजस्थान के हैं तो इस अपने स्टेट के बारे में आपको अपेक्षाकृत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। सती सिस्टम एज ए ट्रेडिशन, हो सकता है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है, देखिए ये इतिहास के विद्यार्थी से पूछा गया, याद रखिए कि कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस होते हैं जिनके पूछने के पीछे जो कैंडिडेट है उसकी अपनी पृष्ठभूमि काम कर रही होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई साइंस का मैं आपको बड़ा कठिन प्रश्न बताऊंगा तो आप ये मत समझिएगा कि वो आपसे भी पूछा जाएगा। वो जो साइंस का प्रश्न होगा उससे इसलिए पूछा गया है कि उसके सब्जेक्ट में रहा होगा या किसी प्रोफेशन में वो इस तरह के प्रोफेशन में होगा तो उससे उसके प्रोफेशन के एक्सपीरियंस के तहत वो क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा। लेकिन जो जनरल स्टडीज के कॉमन जो क्वेश्चन है वो किसी से भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, वाई पॉवर्टी स्टिल परसिस्ट इन इंडिया, भारत में अभी भी क्यों गरीबी है। फिर यह है कि जो LGBTQ कम्युनिटी है उनके अधिकार के बारे में आर्टिकल 377 जो अभी आप देखते हैं ना कि इन लोगों को अधिकार दिया गया संविधान में संशोधन करके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उठा करके देखिए। इस पर मैंने बहुत विस्तार से बातें की हैं, इस पर आपको करंट कंटेंट भी प्रोवाइड किया गया है। डैम सेफ्टी इशू आफ्टर केरल फ्लड, इस पर तो बहुत ज्यादा हमने करंट कंटेंट भी आपको दिया, और केरल में जो फ्लड आया उसके कारणों पर भी हम लोगों ने खूब बात की है और बड़ी प्रमुखता के साथ बात की है। फार्मर्स प्रॉब्लम एंड फार्म लोन वेवर, ये तो अभी की समस्या है, किसानों की समस्या कैसे सुलझाई जाए, खासकर धड़ाधड़ उनकी जो कर्ज है उनकी माफी की घोषणा की जा रही है। अर्बन गवर्नेंस, बीमारू स्टेट, रेलवे और जनरल बजट का एक साथ मिला दिया जाना, खासकर मी टू जो कंपेन हुआ था, महिलाओं का जो कार्य स्थल पर शोषण होता था, इसको लेकर के है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये जो मी टू कंपेन है इससे जो क्वेश्चन बनेगा, याद रखियो, मी टू कंपेन पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके माध्यम से क्वेश्चन बनेगा वर्क प्लेस पर उनकी सिक्योरिटी को लेकर के। दोस्तों, आप जाकर के पिछले डेली ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। फिर है वीमेन एम्पावरमेंट, इसी से जुड़ा हुआ है। तो मित्रों, ये उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिख करके भेजे, लेकिन अलग तरीके के भी कुछ प्रश्न उन्होंने भेजे हैं, लेकिन चूंकि अब वक्त नहीं है तो मैं उन्हें आपको नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण थे वो यही थे। और इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर अपील करूंगा कि प्लीज, आप लोगों के लिए मौका है, खासकर जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास रह रहे हैं उन्हें इस मौके को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए, उन्हें धौलपुर हाउस जाना चाहिए, एक दिन वहां बिताना चाहिए। यह आपकी तैयारी का बहुत अच्छा तरीका होगा और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा, और जब आप इंटरव्यू देने दोबारा वहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कि आपका जो भय है वो कितना कम हो चुका है, आप अपने को बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो मान करके चलिए कि आधी लंका तो आप जीत चुके हैं। मित्रों, आप वहां जाइए, जो स्टूडेंट बाहर आते हैं उनसे बातचीत कीजिए, उनसे क्वेश्चंस पूछिए। और एक अपील मेरी ओर से कि फिर वो प्रश्न अगर आप मुझे लिख करके भेजेंगे तो मैं आपकी ओर से और विद्यार्थियों तक उसे पहुंचा सकूंगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिपिंग्स इंडियन एक्सप्रेस की दे रहा हूं दोस्तों, इंटरप्राइज एम्पावरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। हाँ, हिंदी में मैं इस आर्टिकल को आप लोगों को अवश्य उपलब्ध कराऊंगा। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, प्रतीक सिंह जो थाड़े महाराष्ट्र से हैं। प्रतीक सिंह जी, आपने सूचना दी है कि आप अभी अभी अपने विवाह के बंधन में बंधे हैं, तो मैं अपने सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं, और आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। कुछ दोस्त अन्य दोस्तों के नाम हैं, साक्षी साहू, रेखा द्रविड़ फिरोजपुर पंजाब से, अतुल यादव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, और लालजी जायसवाल, आप भी हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आप सबसे मैं 2 दिनों के लिए इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, नमस्कार।